आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजारत खारजा ने कहा है कि हुकूमत भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है और भारत यमनी हुकाम और दोस्त हुकूमतों के राबते में है। स्वदेशी तर्ज पर डिजाइन किए गए हथियार सिस्टम आकाश प्राइम का लद्दाख में बुलंदी पर कामयाब तजुर्बा करते हुए भारत ने दिफाई शोबे में बड़ा संग मील उबूर किया है। पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हुकूमत को रूसी खाम तेल पर आयद पाबंदियों से तश्वीश नहीं है। जनाब पुरी ने कहा कि नया भारत दबाव में नहीं बल्कि बाअसर तौर पर काम करता है। इराक के अलकूत शहर में लगी जबरदस्त आग में 60 लोगों की मौत हो गई। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाली भारत के हिस्सों में अगले कुछ दिन के दौरान शदीद तरीन बारिश की पेशगोई की है। बिहार में बिजली गिरने के वाकयात में 19 लोगों की मौत हो गई। और एशिया की आला तरीन दर्जाबंदी की हामिल पैरा लॉन टेनिस खिलाड़ी लक्ष्मी जडाला ने ग्वालियर में नेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही जडाला स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2027 के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। अब खबरें तफसील से। खारजी उमूर की वजारत ने कहा है कि यमन में निमिषा प्रिया का मामला एक हसास मामला है और भारतीय हुकूमत ने इस केस में हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। आज सपहर नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि यमन में मकामी हुकाम ने इस महीने की 16 तारीख को उसे दी जाने वाली सजा को मुलतवी कर दिया है।
The government of India has been offering all possible assistance in the case. We have provided legal assistance and also appointed a lawyer to assist the family. We have also arranged for regular consular visits by a family and we are also in touch with local authorities as also the family members to resolve this issue. This included concerted efforts in recent few days to seek more time for the family of Ms. Nimisha Priya to reach a mutually agreeable solution with the other party. We continue to closely follow the matter and render all possible assistance in the case. We are also in touch with some friendly governments in this regard.
नीटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के बयान पर तर्जुमान ने इस बात का इरादा किया कि अपने अवाम की तवानाई की जरूरतों को पूरा करना भारत की अव्वलीन तरजीह है।
We have seen reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter.
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल बिहार और मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। वजीर आजम बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और इन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। ये प्रोजेक्ट रेलवे, सड़क, देही तरक्की, माही परवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मवासलाती टेक्नोलॉजी के शोबों से मुतालिक हैं। जनाब मोदी ने 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना कौमी देही रोजगार मिशन के तहत बिहार में 400 करोड़ रुपए की रकम को 61,500 अपनी मदद आम ग्रुपों को भी जारी करेंगे। मगरबी बंगाल में भी वजीर आजम 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और इन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जुनूबी कोरिया के खसूसी सफीरों के एक वफद ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम ने भारत जुनूबी कोरिया अहमियत की हामिल शराकतदारी को आगे ले जाने के भारत के अज्म का इरादा किया। जनाब मोदी ने पिछले महीने जुनूबी कोरिया के सदर जैमयुंग ली के साथ अपनी मुलाकात को याद किया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि जमहूरियतों के माबेन करीबी तावुन से भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली में इजाफा हुआ है। इंदौर में लगातार 8वें साल भी भारत के सबसे साफ सुथरे शहर का अपना खिताब बरकरार रखा है। मरकजी हुकूमत की सालाना सफाई सुथराई सर्वे में सूरत ने दूसरा जबकि नवी मुंबई ने तीसरा मकाम हासिल किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मुनाकिद तकरीब के दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नवे एडिशन के इनाम दिए। इस मौके पर अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि सफाई सुथराई विकसित भारत 2047 विजन के सबसे अहम पहलुओं में से एक है। सदर जमहूरिया ने मुल्क को साफ, सेहतमंद और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हमवतनों से आगे आने की अपील की।
स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्प के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे उसी दिशा में हम जा रहे हैं।
3 लाख से 10 लाख के दरमियान की आबादी वाले शहरों के जुमरे में नोएडा सबसे साफ सुथरा शहर बनकर उभरा, वहीं चंडीगढ़ ने दूसरा और मैसूर ने तीसरा मकाम हासिल किया। दूसरी जानिब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के जुमरे में अहमदाबाद ने पहला मकाम हासिल किया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ जुमरों के 78 इनामात दिए गए। इस साल 4 जुमरों में इनामात दिए गए जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और आबादी के 5 जुमरों के सरफहरिस्त 3 शहर शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश के 8 शहरों ने मुख्तलिफ जुमरों में इनामात हासिल किए। इंदौर ने सुपर स्वच्छ लीग के शहरों में पहला मकाम हासिल करते हुए लगातार 8वीं मर्तबा मुल्क का सबसे साफ सुथरा शहर होने का खिताब हासिल किया। ये खबर पहुंचते ही इंदौर में त्यौहार जैसा माहौल हो गया और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। भोपाल सबसे साफ सुथरे शहरों में दूसरे मकाम पर रहा। भारत ने भारतीय फौज के लिए बनाए गए आकाश हथियार सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन आकाश प्राइम के जरिए लद्दाख में बुलंदी पर परवाज कर रहे 2 तेज रफ्तार गैर इंसान बरदार निशानों को कामयाबी के साथ तबाह किया। ये हथियार निजाम 4,500 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर काम करने के लिहाज से तैयार किया गया है और देसी साख से तैयार करदा रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जैसे जदीद तरीन अपग्रेड से लैस है। ये हसूलियाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा फजाई दिफाई निजाम की गैर मामूली कारकर्दगी के बाद मिली है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस अहम संगे मील को उबूर करने पर भारतीय फौज DRDO और इसकी तैयारी में शामिल सनत को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हुकूमत को रूसी खाम तेल पर आयद पाबंदियों से तश्वीश नहीं है क्योंकि बाजार में खातिरख्वाह सप्लाई दस्तियाब हैं। नई दिल्ली में ऊर्जा वार्ता 2025 से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने कहा कि जहां से भी कम कीमत पर तेल दस्तियाब हो वहां से भारत तेल दरामद करेगा। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है जहां हुकूमत दबाव में नहीं बल्कि बासर तौर पर काम करती है। जनाब पुरी ने मजीद कहा कि भारत ने 27 मुमालिक से तेल खरीदने की बजाय अब 40 मुमालिक से तेल की खरीद शुरू करते हुए अपनी सप्लाई के जराए को वसी कर दिया है।
There is availability of oil more than enough. There is more and more crude oil coming on the market from the Western Hemisphere. That is another very important fact. If you have more supply coming in, the price will be as anticipated. Today the price 68.5. आने वाले समय में मैं इसी रेंज में समझता हूँ कच्चे तेल के दाम रहेंगे। हमारा हिसाब है ये 65-70 के बीच में ही रहेगा। अगर इसमें चेंज आएगी तो चेंज 70 के ऊपर नहीं आएगी, ये 65 से नीचे आएगी।
ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने ज़रई यूनिवर्सिटीज और तहकीकी इदारों से अपील की है कि वो वजीर आजम के कृषि धन धान्य योजना के तहत ज़रई पैदावार को बढ़ाएं। आज बिहार के समस्तीपुर में वाक़े पूसा इंस्टीट्यूट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 4वीं जलसे तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ज़रई पैदावार और पैदावारियत को बढ़ाने के लिए इस स्कीम के तहत 100 अजला को मुंतखब किया गया है। जनाब चौहान ने इस बात का भी तस्किरा किया कि कृषि धन धान्य योजना के तहत बिहार के अजला को भी शामिल किया गया है। इराक में आज अलकूत शहर की एक हाइपरमार्केट में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया जिसमें कम से कम 60 अफराद की मौत हो गई और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। सूबाई गवर्नर ने इस बात की तस्दीक की है कि एक हाइपरमार्केट और एक रेस्तरां में आग लगने का वाकया पेश आया और आग बुझाने वाले अमले ने बहुत से लोगों को बचाया है। उन्होंने मजीद कहा कि इमारत और मॉल के मालिकान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी दौरान इस वाकये की तहकीकात भी की जा रही है। अभी तक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। پاکستان میں پچھلے 3 ہفتے سے جاری مانسون کی بارش اور اس سے وابستہ واقعات میں کم از کم 124 افراد ہلاک اور 264 زخمی ہوئے ہیں. پنجاب صوبے میں بارش سے وابستہ واقعات میں چھتوں کے گرنے اور کرنٹ لگنے سے 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی بارش سے متعلق واقعات میں 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پنجاب صوبے کے لاہور، اوکارا، فیصل آباد اور مضافاتی اضلاع میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں اگلے 5 روز کے دوران موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی ہے. پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں بھی ہفتے کے روز تک اسی طرح کی بارش کے حالات رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران دہرادون، ٹہری، رودر پریاگ، نینی تال، باگیشور اور پتھوڑا ضلعوں میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش کی وارننگ دی ہے. ساتھ ہی دیگر کچھ ضلعوں میں بھی گرج چمک اور بجلی کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے. اس مدت کے دوران ریاست کے سبھی اضلاع کے دور دراز کے علاقوں میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے. اس دوران مختلف ضلعوں میں رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے. راجدھانی دہرادون سمیت ریاست کے زیادہ تر ضلعوں میں آج صبح بارش ہونے کے بعد آسمان ابھر آلود رہا. دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر آر کے جینامنی نے کہا کہ پورے مدھیہ پردیش اور جنوب مشرقی اتر پردیش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج دلی میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے اور اس مہینے کی 19 تاریخ سے خطے میں بارش میں بتدریج اضافہ ہوگا.
Very heavy to extremely heavy rainfall has occurred over South Uttar Pradesh and North Madhya Pradesh mainly, covering the northern parts of Madhya Pradesh district. IMD has issued a red color, extremely heavy rainfall warning for whole Madhya Pradesh, Southeast Uttar Pradesh today, and on 18th July it has issued red color warning for isolated extremely heavy rainfall over East Rajasthan, West MP and also surrounding area over the national capital Delhi. The rain will increase actually from 19th of night.
بہار میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران بجلی گرنے سے کم از کم 19 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے. آج سہ پہر سب سے زیادہ نالندہ ضلع میں، اس کے بعد ویشالی ضلع میں 4 ہلاکتیں ہوئیں. پٹنہ اور بانکا ضلعوں میں 2 اموات کی خبر ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق یہ سبھی اموات بارش کے دوران ہوئی جب یہ لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے. راجدھانی لکھنؤ سمیت اور مشرقی اور مغربی اتر پردیش کے کئی ضلعوں میں آج اوسط سے بھاری بارش ہوئی. اس سلسلے میں تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
وارانسی کے تمام بڑے گھاٹ زیر آب آ گئے ہیں کیونکہ دریائے گنگا کی سطح میں مسلسل بارش کے باعث اضافہ ہو رہا ہے. ریاستی وزیر برائے آبی وسائل سوتنتر دیو سنگھ نے کہا کہ حکومت ریاست میں سیلاب کے خدشے کے پیش نظر پوری طرح محتاط ہے. سیلاب چوکیوں کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ پریاگ راج ڈویژن اور بندیل کھنڈ کے کچھ اضلاع میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید.
ایشیا کی سب سے اعلی درجہ بندی کی حامل پیرا لان ٹینس معذور کھلاڑی لکشمی جڈالا نے نیشنل ٹینس چیمپئن شپ 2025 معذور افراد کے کھیل میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. انہوں نے مدھیہ پردیش کے گوالیار میں اس کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اس کامیابی کے بعد 15 سالہ جڈالا باضابطہ طور پر اسپیشل اولمپک ورلڈ گیمز 2027 کے لیے کوالیفائی ہو گئی ہیں. یہ مقابلے مصر کے قاہرہ میں منعقد ہوں گے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت بھارتی نرس نمیشا پریا معاملے میں ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے اور بھارت یمنی حکام اور دوست حکومتوں کے رابطے میں ہے. سودیشی طرز پر ڈیزائن کیے گئے ہتھیار سسٹم آکاش پرائم کا لداخ میں بلندی پر کامیاب تجربہ کرتے ہوئے بھارت نے دفاعی شعبے میں بڑا سنگ میل عبور کیا ہے. پیٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ حکومت کو روسی خام تیل پر عائد پابندیوں سے تشویش نہیں ہے. جناب پوری نے کہا کہ نیا بھارت دباؤ میں نہیں بلکہ بااثر طور پر کام کرتا ہے. عراق کے الکوش شہر میں لگی زبردست آگ میں 60 افراد کی موت ہو گئی. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمالی بھارت کے حصوں میں اگلے کچھ دن کے دوران شدید ترین بارش کی پیش گوئی کی ہے. بہار میں بجلی گرنے کے واقعات میں 19 لوگوں کی موت ہو گئی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.